ओम शांति। ज्ञान सरोवर निवासियों के साथ मुलाकात करना बहुत अच्छा लगता, क्यों क्योंकि आप सभी को हम देखते तो रहते हैं, परंतु बैठ करके कुछ लेन देन करने का मौका कम ही बनता। तो जब ये चांस बनता है वर्ष में दो बारी या कभी कभी वर्ष में एक बारी, उससे अधिक तो नहीं बनता, एक या दो बारी ही होता, तो एक नजदीक में आप सबसे मुलाकात करना अच्छा लगता। हम आप लोगों से तो सेवा लेते ही रहते हैं, परंतु शब्दों में कभी आपको थैंक्स देवे या न भी देवे, हम सबकी दिल की दुआएं तो आपके पास पहुंच ही जाती, राइट? हम यही सोचते हैं कि बाबा ने किस तरह से ऐसे मशीन बना के रखी है जो अपने आप ही ऑटोमेटिक चलती रहती। तो बाबा ने ऐसे स्थान बनाया है, बाबा ने ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स तैयार रखी हैं जो अपने आप ही सब कुछ चलता रहता और बाबा का जादू का खेल देखते जाते। बाकी एक समस्या है जिसका हल कौन कर सकता वो मुझे नहीं मालूम, जगह की कमी पड़ जाती राइट फिर मुझे शशिबेन बताती है बार बार कि अधिक बिल्डिंग्स तो बनी नहीं सकती पांडव भवन में तो एक कीव भी नहीं लगा सकते तो ज्ञान सरोवर में भी अधिक तो कुछ एक्सपेंशन तो हो नहीं सकती, तो अभी जितना है उसमें समा करके चलना है। और बात ये होती कि बाबा का कार्य तो विदेश में बढ़ता ही जा रहा, भारत में भी बढ़ता जाता, परंतु भारत के लिए तो शांतिवन में एक्सपेंशन बिल्डिंग्स की होती ही रहती, कम पड़ती है तो मनमोहिनी कॉम्प्लेक्स बन गया 5,000 लोगों के रहने का स्थान बन गया। अच्छा, कैसे हो सकता? ठीक है गीता बहन, आप देखना रिपेयरिंग भी नहीं तो छत आपकी टूट रही है, उसको भी रिपेयर नहीं कर सकते। अच्छा, कमाल है। देखो बाबा को कुछ अपना दिखाना होगा, जादू का खेल और करता जाएगा, परंतु अक्टूबर तो शिफ्ट हो गया नीचे क्योंकि उसमें तो अभी 2,200 की संख्या थी और यहाँ तो ऊपर में आराम से 1,500 ही ठहर सकते। तो आखिर तीन साल से मैं समझती अक्टूबर नीचे ही चलता, परंतु अभी तो फेब्रुअरी में भी जब शिवरात्रि का कार्य था तो उस समय रोज हमारे पास यही फोन्स आते थे कि क्या करे कैसे करे क्योंकि उस समय भी मैं समझती कितने लोग थे, 1,200, 1,400, 1,400, तो बहुत संख्या आ गई थी। तो जैसे पीस ऑफ माइंड रिट्रीट है, जितनी संख्या है अकोमोडेशन की संख्या तो वही है, एक्स्ट्रा कमरे तो नहीं है, बाकी देश तो बढ़ते जा रहे हैं, तो नए देश वाले कहते हैं कि हम लोगों को एक्स्ट्रा चांस मिलना चाहिए क्योंकि उन बेचारों को तो कोई पालना ही नहीं मिली है। और पुराने देश वाले कहते हैं हमारे पास तो बहुत सारे लोग हैं जो आने चाहते हैं तो ये शुरू से ही स्थान कम पड़ने का वरदान संगम को मिला हुआ है, तो वही चलता रहता। आजकल लंदन में हम लोग ग्लोबल हाउस में सारे परिवार को बुला ही नहीं सकते, और जब लंदन में दादी फिर भी कुछ समय रहती थी तो हम ऐसे करते थे, नॉर्थ को एक वीकेंड बुलाते थे, साउथ को दूसरे वीकेंड बुलाते थे। अभी तो वो मार्जिन ही नहीं होती, दादी होती ही है एक वीकेंड के लिए, तो फिर उसमें हम लोगों को बाहर का स्थान लेना पड़ता। तो उसमें फिर ट्रस्टीज हम लोगों से पूछते हैं कि इतना हजारों पाउंड्स का खर्चा, और उसमें है तो दादी ठीक है, परंतु बाहर वालों की तो वो सेवा नहीं होती, ब्राह्मणों की ही होती, तो इतना हम कैसे जस्टिफाई करें? तो हम कहते हैं कि हम आपको लिखित में देंगे कि खूब सारी जस्टिफिकेशन है, आप लोग निश्चिंत रहो। परंतु कहने का मतलब कि हर जगह कम पड़ती ही जाती है, ये वरदान है। ग्लोबल रिट्रीट सेंटर जितना लोगों को रहने का स्थान है, अभी शुरू में हम लोगों ने शुरू किया तो हर जो देश वाले हैं, यूरोप के देश वाले, उनको हम कहते थे कि समर के दिनों में आप लोग अपने सारे लोग आकर के रिट्रीट करें। अभी तो बहुत वर्षों से, अभी स्पेन है उनके पास 200 की संख्या है, हॉलैंड है 250 की संख्या है, अभी ग्लोबल रिट्रीट सेंटर में कहाँ उनको अकोमोडेशन देंगे। तो भी उनको चेंज कर लिया, आप लोग अपना नेशनल रिट्रीट करते रहो, आप लोगों के पास हम एक टीचर भेज देंगे और बाकी यहाँ पर जो आपके न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको भेजो, ताकि फिर न्यू स्टूडेंट्स को 2 दिन 3 दिन रह करके अनुभव क्या होता है अमृत वेला मुरली, फिर आपके पास वापस आएंगे, पक्के बन के आएंगे। तो हम लोगों ने ऐसे सिस्टम अभी बना ली है। तो बाबा का कार्य इसी हिसाब से ही हम देखते जा रहे हैं, बहुत फास्ट आगे बढ़ता जाता। बाकी बाबा के बच्चे, बाबा कभी 70 इयर्स की बात कहते, बाबा कभी 40 इयर्स की बात कह रही हैं। मैं समझती इस सीजन में एक भी मुरली नहीं होंगी जबकि बाबा ने इस बात को नहीं कमेंट किया हो। 70 वर्ष हुए, 40 वर्ष हुए अव्यक्त पालना के पाठ को, तो बाबा अभी लगता है कि जब कोई भाषण करता है तो घड़ी घड़ी उसकी आंख घड़ी पर जाती है, तो लगता है कि उसको शायद समाप्ति करने का ख्याल आ रहा। और जबकि बाबा की बार बार घड़ी पर आंख जा रही है, अभी 70 वर्ष हुए, 40 वर्ष हुए, तो उससे आपको क्या लगता? अभी मुझे तो ऐसे ही लगता कि बाबा जल्दी कुछ समाप्ति का ही सोच रही है। परंतु उससे पहले बाबा क्या चाहती हैं? बाबा की प्रत्यक्षता तो हम देखते जा रहे हैं कि कैसे विश्व में सेवा भी फैल रही है। 120 देशों में बाबा का कार्य पहुंच चुका, बहुत कम स्थान रहे हुए हैं जहां अभी बाबा का संदेश नहीं मिला है। मैं समझती संदेश तो मेजॉरिटी देश में 180 कंट्रीज में तो पहुंच ही गया होगा, परंतु सेंटर्स भी 120 देशों में अभी चल चुके हैं। तो जो विश्व को संदेश देने का कार्य है वो तो जल्दी संपन्न हो ही जाएगा इस वर्ष के अंदर ही, ये तो मैं पूरा ही हिसाब बता सकती। संदेश देने का कार्य तो हो जाएगा विश्व की बात, बाकी एक एक व्यक्ति व्यक्ति वो तो यहाँ पर जहां जहां मैं जाती हूँ ना, तो आस्था चैनल की बातें मैं सुनती हूँ, हाँ हम लोगों ने प्रोग्राम देखा, हाँ हम लोगों ने प्रोग्राम देखा, तो वो भी घर घर में बाबा का संदेश पहुंच रहा है, फिर कोई सुने ना सुने वो फिर नंबरवार हरे की तकदीर होती है। पुरुषार्थ अनुसार तो नहीं कहेंगे बाहर वालों के लिए, तकदीर अनुसार ही कहेंगे। और बाकी जो प्रत्यक्षता की बात आती है कुंभकर्ण को जगाने के लिए, उसमें आप लोगों ने रशिया का भी समाचार सुना कि बॉम्बे में कितनी सुंदर सेवाएं रही। तो बाबा जो कहते थे ना विदेश से आकर के कुंभकर्ण को जगाएंगे, तो भी ऑटोमेटिकली वो भी कार्य शुरू हो ही गया। सर्व इंडिया का प्रोग्राम बाबा कह रही हैं और साथ साथ फिर बाबा टचिंग द्वारा ये कर भी रहे हैं, करा भी रहे हैं। तो न सिर्फ बाबा ने कहा कि हाँ सर्व इंडिया का प्रोग्राम हो, परंतु प्रैक्टिकल वो हम देख रहे हैं कर चल ही रहा है। तो बाकी रहा कि जो बाबा की चाहना है कि बच्चे एवर रेडी रहे, क्यों? क्योंकि कोई भी बात अचानक ही आ जाती, और साथ ही साथ फिर बच्चे बहुत काल का पुरुषार्थ वो संस्कार अपने में धारण करके वो ऐसे तैयारी हो कि जब बाबा बुलावे तो आत्मा जा सके। मैं आप लोगों को क्लास नहीं करा रही हूँ, समाचार ही सुना रही हूँ लग रहा है। तो अभी पुणे में जाना हुआ तो मैं सुंदरी बहन को तो 1968 से नज़दीक से जानती हूँ, और उससे पहले भी जब हम भारत जाते थे, पुणे जाते थे लंदन से, और उस समय हम लोगों का इंडिया आना होता था अगस्त के मास में ही, क्योंकि विदेश की छुट्टियां अगस्त में होती, तो राखी के ही दिन होते थे। तो हम लोग दादी जानकी के पास राखी बांधने के लिए, जैसे आप लोग जानते हैं सेंटर्स पर बच्चे बच्चे आ जाते हैं, माँ बाप ही बच्चों को लेके आते कि हाँ राखी बांधो, तो हम लोग बड़े शौक से दादी के पास जाते थे उस समय राखी बांधने के लिए। तो उस समय सुंदरी बहन को देखते थे, परंतु कोई ऐसे बातचीत नहीं हो पाई। फिर जब अप्रैल 1968 में मन में संकल्प आया कि मैं दादी के पास जाऊं, तो वैसे ही कोई और आगे का संकल्प नहीं था, सिर्फ थोड़ा ये था कि अभी कुछ समय हो गया है, 3 मास भारत में, कुछ मुझे सीखना चाहिए, परंतु राजयोग सीखना है ये भी मन में नहीं था, परंतु बाबा ने टचिंग दी या ड्रामा अनुसार मैं दादी के पास पहुंच गई। तो दादी अकेली थी, और दादी उस समय कहाँ रहती थी, गुरु नानक नगर, बिल्कुल लिटरली एक था छोटा सा हॉल जहाँ पर उस समय तो सब पट पर बैठते थे, तो 40 लोग खींच खींच करके बैठ सकते, आराम से 20 बैठ सकते थे, और खींच खींच करके 40 बैठ सकते थे, इतना था क्लासरूम बस। और फिर किचन कितना था, ये टेबल का आप 4 गुना हिसाब करो, बस इतना था किचन, या शायद इसका डबल हिसाब करो, 4 गुना भी नहीं, डबल हिसाब। और बाकी था एक बाजू में छोटा सा कमरा जो बैठने का भी होता था, दादी और सुंदरी बहन के सोने का भी होता था, और कारोबार भी वहीं चलती थी, और एक छोटी सी बालकनी थी, बस उस स्थान में दादी रही हुई थी, जिस कहानी को दादी फिर कहती है, जब मैं जून मास में 68 में बाबा के पास आई, और बाबा ने बाबा को कहा, मैंने बाबा स्थान तो ठीक होना चाहिए सेंटर का, और अभी तक तो नहीं मिला है, तो बाबा ने कहा कि हुआ पड़ा है, बस ये बाबा के शब्द, बच्ची तुम जाओ, हुआ पड़ा है। और दादी वापस पहुंची है मधुबन से, और उस समय बाबा ने उसको कुछ यहाँ बेरीज होती हैं, कुछ फल होता, उसका मुरबा बनता था, मैं नाम भूल गई हूँ वो क्या चीज़ होती, वो खट मीठी होती है, खट्टी मीठी, नहीं नहीं आमला तो खट्टा खट्टा होता, मीठा नहीं होता, मैं भूल गई हूँ, एनीवे तो कोई कोई प्रकार के छोटे छोटे बेर होते। तो दादी से पूछना होगा, उसको पक्का याद होगा। तो एनीवे तो वो छोंदा नहीं, आम का छोंदा नहीं है, छोटे छोटे बेर, एनीवे तो दादी वो लेके गई थी। और दादी वहां पहुंची, और सुंदरी बहन की माँ गोपी वो उस समय ज्ञान में थी, तो उसने दादी को संदेश भेजा कि मैंने एक मकान गुरु नानक नगर यहाँ, उस रोड से निकलो, मेन रोड पर आओ, और वहाँ पर बहुत अच्छे सुंदर फ्लैट्स बने हुए थे, अभी भी नए नए बने थे। तो गोपी ने संदेश भेजा, अपने भाई को भेजा वहाँ कि दादी के पास जाओ, दादी अभी आई होंगी, दादी को बोलो मेरे लिए नाश्ता भेजे। और वहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ, सफाई कर रही हूँ। तो दादी को तो वो कोई खास प्यार से उसे कहता है हुजत रख करके, तो दादी ने कोकी और वो मधुबन वाला मुरबा, उसको नाश्ता भेजा। तो उसने वो सारे दिन वहाँ पर वो सफाई की, शाम को करवाई, फिर शाम को वो दादी के पास आती है और कहती है कि ये है आपके लिए स्थान, मुझे एनीवे सुंदरी बहन को कुछ डाउरी तो देनी ही थी, तो ये आपके लिए जगह है। तो जिस समय मधुबन का मुरबा दादी उसको भेज रही थी, ये तो पता ही नहीं था कि ऐसी कोई बात होने वाली है, परंतु बाबा ने जो शब्द कहे कि बच्ची तुम जाओ, हुआ पड़ा है। तो बिल्कुल हाथ में नए मकान की चाबी वो शाम तक, दादी पहुंची है सुबह को और शाम तक हाथ में चाबी मिली है। तो ये है सुंदरी बहन की कहानी की। सुंदरी बहन की माँ ने वो स्थान दिया, परंतु जब मैं दादी के पास उस दिन गई थी तो करीब 11-12 बजे का समय था, और दादी और सुंदरी बहन दोनों ही है ही छोटा सा स्थान एनीवे, तो दो ही रहते थे। तो मैं दादी के साथ, दादी ने ही दरवाजा खोला जब मैं वहां पहुंची, तो बड़े प्यार से दादी ने बातें सुनाई। फिर जब देखा कि इसका अभी कुछ इंटरेस्ट जागृत हुआ है, तो दादी ने मुझे कहा, अच्छा तुम सुंदरी के साथ कोर्स करना। तो फिर सुंदरी बहन ने मुझे 7 दिन का कोर्स कराया, परंतु तीसरे दिन ही दादी ने कहा कि अभी तो तुमको क्लास में आना चाहिए। तो मैं दोपहर को जाती थी कोर्स करने, और फिर सुबह को जाती थी दादी का क्लास सुनने, और फिर क्लास के बाद तो मुरली। ये जो दादी का मंथन का जो वरदान है, वो तो 1950 से लेकर दादी को बाबा ने अमृतसर से लेकर दिया हुआ था, तो वो वहाँ पर भी पहले क्लास कराती थी और फिर मुरली सुनाती थी। तो क्लास सुन करके फिर हम मुरली सुनते थे, तो कुछ समझ में आता था, नहीं तो बाबा की मुरली तुरंत सुनो तो इतना तो समझ नहीं आता है, कोर्स भी पूरा नहीं किया हुआ था। तो सुंदरी बहन ने ही मुझे कोर्स कराया था, तो वो पुराना संबंध एक जैसे कि मित्रता का बना हुआ है। और सुंदरी बहन के साथ कई बारी टूर्स भी किए महाराष्ट्र जोन के अंदर। एक बारी सुंदरी बहन मुझे वहां से पुणे से बाय रोड कोल्हापुर और पता नहीं कौन से और पुर रास्ते में आती हैं, वो पास करते करते एक एक स्थान पर रुक करके सेवा करते हम लोग गोवा में पहुंचे, क्योंकि मुझे उस समय कुछ कार्य था गोवा में। तो सुंदरी बहन का उस समय कनेक्शन था, तो वो साथ में लेके चली। और फिर एक बारी, मैं समझती 1973 की बात है, दादी सुंदरी बहन और मुझे जाना था हैदराबाद। हैदराबाद भी दादी का ही जोन था, तो नागपुर हैदराबाद दोनों स्थानों पर। तो दादी की तबीयत उस समय सवेरे ठीक नहीं थी, तो मैंने कई बारी देखा था कि दादी की अभी तबीयत ठीक नहीं है, फिर बाबा की मदद, खुद की हिम्मत, फिर खड़ी होकर के जो सेवा सामने होती है दादी कर लेती। ये तो आप लोगों ने भी कई बारी देखा है अभी। परंतु उस दिन तो मैं सवेरे तो निश्चिंत थी कि हाँ दादी तो शाम रात्रि की ट्रेन है, दादी ठीक हो जाएंगे। फिर जैसे दिन बीतता जाए दादी उठे नहीं, तो मुझे थोड़ा संकल्प चले, तो मैंने सोचा कि अभी प्रोग्राम कैंसिल होगा। फिर 4 बजे सुंदरी बहन मुझे कहती है कि तुम्हारी पैकिंग तैयार है ना? मैंने कहा हाँ, परंतु दादी तो अभी तो कोठी ही नहीं है, दादी की तो तबीयत ठीक नहीं है। तो सुंदरी बहन कहती आओ चलो देखे दादी क्या कहती। उसने खुद मुझे सुनाया नहीं, दादी के पास ले गए। तो दादी फिर लेटे लेटे ही हम लोगों से मिली, और दादी ने कहा कि वहाँ तो प्रोग्राम्स बने हुए हैं, मैं तो जा नहीं सकती, आपको जाना होगा सुंदरी बहन के साथ। तो मुझे तो फर्स्ट टाइम ऐसे पता चला कि ऐसे भी होता कि दादी न जाए और दादी की जगह पर और लोग जाए। तो परंतु वो भी टूर नागपुर हैदराबाद का बहुत ही अच्छा रहा, वेरी वेरी गुड। तो तब से फिर विश्वास बैठा कि बाबा को जो कार्य कराना है, जो उस समय सामने इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बाबा उनों के द्वारा कार्य करा लेते। तो इस तरह से सुंदरी बहन के साथ हमारा बहुत ही सुंदर फ्रेंडशिप रही है। मैं क्यों ये सारी कहानी सुना रही हूँ, क्योंकि वैसे तो सुंदरी बहन की तबीयत तो कुछ समय से तो आप सब ने देखा होगा जो जानते हैं कि इतनी ठीक नहीं रही। पहले जिस तरह से शेरनी शक्ति, इतना उसने सारा महाराष्ट्र में एस्टैब्लिश किया है, एक बहन वहां की वो भी आई हुई है, 20 का ग्रुप शायद आया है पुणे से, तो वो कार्यक्रम करने के लिए अस्थियां लेकर के आए हैं आदत। परंतु एक बहन मुझे बता रही थी कि जब मैं छोटी थी तो सुंदरी बहन हमारे गांव में आती थी और गांव में फिर सारा दिन वो लोगों से मिलती थी, कोर्सेस कराती थी, क्लासेस कराती थी, आखिर हमारे ही घर में गीता पाठशाला खुली और वहां पर ही फिर मैं तो फिर छोटी थी, फिर जैसे ही मैं बड़ी हुई मैं समर्पण होकर के फिर यहाँ ही आ गई पुणे में। तो इस तरह से जगह जगह पर जाना, इतना सबकी सेवाएं करना, आप सोचो कि 4000 लोग, वर्किंग डे था, गुरुवार का दिन था, परंतु और उन्होंने एक वहां की सोसाइटी का हॉल है परंतु वो भी छोटा पड़ जाता था, तो बहुत बड़ा पंडाल लगाया। और पुणे की टेम्परेचर आजकल है 39 डिग्रीज, तो 39 डिग्रीज में 4000 लोग, थोड़ी कुर्सियां दोनों तरफ थी, बाकी तो सभी पट पर बैठे थे। तो 10:30 बजे से योग शुरू हुआ, कोई लोग तो सवेरे पहले क्लास, मुरली वगैरह वगैरह, भोग गुरुवार था तो भोग पर आए थे, परंतु कई लोग तो फिर 10:30 तक पहुंचे। और फिर 2:30 बजे तक इतनी गर्मी में, इतने बड़े पंडाल में पंखे कहाँ से आएंगे, तो इतना प्यार से, इतनी भावना से बैठे रहे। तो उसी से ही आपको पता चलेगा कि कितनी उन्होंने सेवा दी हुई है, जो कि प्यार इतना रिटर्न में मिल रहा है। यदि सेवाएं देते नहीं है तो किसका प्यार जागृत नहीं होता है कि वो अपने काम छोड़ के, घर छोड़ करके 10 घंटा सफर करके आकर के पहुंचे इस तरह से, और फिर रहने का तो कुछ प्रबंध नहीं था, तो फिर ब्रह्मा भोजन करके फिर वापस भी लौटे उसी दिन। तो इतना सब कुछ देखा, परंतु कहने का मतलब कि वैसे तो ये लास्ट मैं समझती 2-3 साल तक तो तबीयत ठीक नहीं रही, परंतु उससे पहले तो शक्ति देखनी हो सुंदरी बहन को देखो, कोई भी बात को ठीक करना हो। कोल्हापुर वाली बहन कहती थी कि हमारे सामने कोई भी बात आती थी तो हम फोन करके बहन जी को कहती थी कि ये बात ये बात, तो वो कहती थी मैं बैठी हूं ना, आप क्यों डरते हो, क्यों घबराते हो। तो बिल्कुल ऐसे वो हिम्मत वाली, ऐसे शक्ति थी। और फिर अभी बस 4:45 बजे दादी के पास फोन आया कि तबीयत ठीक नहीं और हॉस्पिटल लेके जा रही हैं, परंतु हॉस्पिटल पहुंचते ही आत्मा चल पड़ी। तो 5:30 तक फिर फोन आया कि वो आत्मा तो चल पड़ी। और फिर कहते हैं कि कोई कोई घड़ी ऐसे होती है जिसको मैं नाम भूल गई हूँ, 5वीं समथिंग, तो उसमें एक आत्मा जाती तो वो चार तो वो चार और आत्माओं को अपने साथ लेके जाती। तो वो घड़ी शायद ऐसी थी। तो फिर दूसरे दिन हमने निर्मला बहन का सुना, फिर तीसरे दिन हमने हुबली वाली बहन का सुना, फिर और किसी का भी सुना, तो लाइन लग गई। हाँ, फिर शुक्ला बहन जलंधर वाली का सुना तो बिल्कुल लाइन लग गई उसके पीछे। परंतु अचानक और एवर रेडी, अचानक विषय कोई बीमार होता है तो भी हाजिर तो है ना, तो फिर भी उसमें एक तसल्ली होती है। और फिर भी कोई भी राय सलाह ऐसी बात होती है तो पूछ सकते, परंतु अचानक बिल्कुल उड़ के चले जाना, तो उसमें किसने बहुत अच्छी बात कही कि कोई भी आत्मा ने इतना समय से अपना पुरुषार्थ लगातार किया है तो वो फिर सहज सहज शरीर छोड़ के ऊपर चले जाती है बाबा के पास, लास्ट में कोई तकलीफ नहीं होती। तो बाबा जो हमें भी कह रही हैं, एवर रेडी, अचानक कोई भी बात आ सकती, और एक समाचार भी मैं पढ़ के आई हूँ ईमेल में, वो भी मैं आपको बता देती। कलोन वाली जर्मनी में एक स्थान है कलोन, ये जो यूडी कलोन है ना, वो वहाँ से शुरू हुआ था पहले पहले। तो आजकल तो यूडी कलोन तो सब जानते हैं ठंडाई का, परंतु वो जगह है कलोन। तो वहाँ पर एक, मैं समझती 30 साल तो उसको हो गए हैं ज्ञान में, शुरू की है गोपी, नाम तो कुछ और होगा, परंतु दादी ने उसी समय गोपी नाम रखा तो उसका चल पड़ा। तो गोपी का ईमेल आया है कि हमारे 10 मीटर दूरी पर एक मकान अचानक ही गिर गया और उसके बाजू में भी दूसरा मकान भी अचानक ही गिर गया। अभी छोटा सा अर्थक्वेक हुआ या क्या हुआ अभी तक कुछ मालूम नहीं, बाकी आजू बाजू कुछ नहीं हुआ, बाबा के मकान को कुछ नहीं हुआ, परंतु वो 2 मकान अचानक ही चले गए और उसमें भी 6 लोग अंदर दब गए हैं। तो मालूम है कि वो परिवार वाले वहीं हैं, परंतु अभी तक उनको निकाल नहीं सके हैं, और जब तक कि निकाले होंगे या नहीं होंगे क्या मालूम, देख लेंगे। परंतु कहती कि पता नहीं चला है कि ये क्या हुआ। तो कहती कि फिर भी बाबा की रक्षा है जो हम सब ठीक ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। ऑस्ट्रेलिया का समाचार, वहाँ पर इतनी गर्मी और वहाँ पर इतना जो बुश फायर, जो जंगल की आग, वो इतनी चली थी बीच में, मैं समझी 10 दिन पहले, जो वो बंद ही न हो, और हवा आती है तो फिर जहाँ हवा आती है वहाँ आग बहुत फास्ट फैल जाती है, तो उसमें कितने लोगों ने शरीर छोड़ा, तो कुछ मालूम नहीं पड़ता है कि क्या हो रहा है। तो अभी ये समाचार सारा सुना करके फिर मैं आप लोगों से प्रश्न पूछती हूँ कि हम अपनी आंतरिक क्या तैयारी करें जो हमारी अवस्था ऐसे हो जब बाबा का बुलावा आवे तो हम ये बाबा को न कहें कि बाबा रुक जाओ अभी मुझे कुछ और काम है। अभी हम अहमदाबाद एयरपोर्ट से लोटस में जा रहे थे तो एक बहुत इंटरेस्टिंग साइन बोर्ड लगा हुआ है वहाँ पर। तो वो क्या है, एक भाई स्कूटर पर चल रहा है और वो फोन पर बातचीत कर रहा है और उसको मालूम नहीं पड़ रहा है कि जिस रास्ते पर चल रहा है वो रास्ता अचानक बंद हो रहा और वहाँ पर एक बिल्कुल रास्ता बंद हो जाता और क्लिफ है, क्लिफ समझते ना, हाँ एक बिल्कुल खड्डा भी मींस बहुत लंबा सा। तो वहाँ उसको मालूम नहीं पड़ा क्योंकि वो फोन पर बात कर रहा, तो वहाँ पर चलते चलते क्या होगा, ओम शांति। तो एक तरफ वो इंग्लिश में एडवर्टाइजमेंट है कि ड्राइविंग करते समय सेल फोन नहीं यूज करो, डेंजर है। दूसरी तरफ गुजराती भाषा में वो उसका ये मैंने पूना में देखा या गुजरात में देखा, एनीवे जहाँ भी देखा, तो वहाँ पर एक चित्र लगा हुआ है और वो है यमदूत का। तो वो फोन पर है ना, तो वो यमदूत उसके साथ फोन पर बात कर रहा है कि तुम्हारा नंबर मेरे पास लग गया है, अभी तुम मेरे पास आ रहे हो। तो उसको पता नहीं चल रहा। तो उस भाई का थी कोई तैयारी नहीं थी जाने की, परंतु बाबा ने हम बच्चों को बताया है कि हम किस तरह से अपनी तैयारी रखें ताकि जब बाबा बुलावे हमको न और कोई काम याद आए कि ये मेरा रहा हुआ कारोबार है, न कोई हम सोचे कि ये हमारे में कमी है, ये हमने पुरुषार्थ करके अभी तक मिटाई नहीं थी, परंतु उस समय बाबा बुलावे और हम तैयार हों और बस जी हाँ करके हम बाबा के पास जल्दी में पहुंच ही जाएं। तो उसके लिए मैं सोचती थी कि एक बात में तो ज्ञान सरोवर वाले बिल्कुल पास है, क्यों? क्योंकि जब मामा कहती थी कि आप अपना पोता मेल देखो, तो पोता मेल में बाबा दादी पोता मेल में मामा कहती थी कि तीन अकाउंट्स देखने होते हैं, एक हमने कितना जमा किया है और दूसरा पूर्व का हिसाब किताब हमने कहाँ तक चुकतू किया है और तीसरा अभी क्या बचत रही हुई है जिसको हमको फिनिश करना है। तो ये तीन लाइंस सेक्शंस देखने होते, क्यों? क्योंकि जब हम शब्द कहते हैं एवर रेडी, इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ कुछ हमारा हिसाब किताब रहा हुआ हो और फिर हम चले जाएं, क्योंकि फिर तो जैसे बाबा ने कहा कि सबको जाना तो है घर, परंतु कोई वाया जाएगा कोई सीधा जाएगा। बाबा ने बड़े रॉयल भाषा से शिवरात्रि के दिन ये शब्द कहे। बाबा ने ये नहीं कहा कि धर्मराज को देखना पड़ेगा शिवरात्रि के दिन, बाबा ऐसे दिन पर तो कुछ ऐसे शब्द नहीं कहेंगे, परंतु बाबा के बहुत सिंपल शब्द थे, या तो आप जाएंगे वाया या तो आप जाएंगे सीधा, हर एक के लिए बाबा बता रहे थे। तो हम अभी से ही, जो बहुत काल के पुरुषार्थ की बात है, अभी से ही हमारी ऐसे तैयारी हो। तो जो पुण्य कर्म का खाता है, जिसमें बाबा ने एक बार ये बहुत अच्छी बात, एक बार ही नहीं कई बार ये बात बताई है, बहुत अच्छी बात कि पुण्य का खाता उसको कहेंगे जबकि आपने सेवा निस्वार्थ भावना से की हुई होंगी। तो मैं देखती हूँ कि तन द्वारा सेवा, बाबा के बच्चों ने ज्ञान सरोवर में, कोई तो जैसे ही ज्ञान सरोवर शुरू हुआ सब आ गए और कई फिर बीच बीच में आते रहे हैं, तो वो तन द्वारा जो सेवा है, करुणा सेवा, यज्ञ सेवा, वो तो आप लोगों ने बहुत बहुत अपना पुण्य का खाता जमा किया हुआ है। और हम सभी जो भी बाबा के बच्चे विदेश से आते हैं, सब कहेंगे कि आप लोगों ने हमको इतनी सुविधाएं दी है, इतना आराम दिया है, जो कभी हमको कोई बात का सोचना नहीं पड़ता, हर प्रकार से सब कुछ प्राप्त है ही। तो वो तन द्वारा, कर्म द्वारा सेवा का खाता खूब सारा आपका बहुत बहुत जमा है। मन की सेवा, वो भी मैं समझती, छोटे छोटे ग्रुप्स भी बने हैं और बड़ा संगठन भी बना है, उसमें भी आप लोगों का योग पर भी ध्यान है। मैं देखती हूँ कि शाम के योग पर भी ध्यान है, अमृत वेले के योग पर भी ध्यान है, और ट्रैफिक कंट्रोल चलता है तो वो भी बात ध्यान पर होती है कि बस साइलेंस में सबको रुक जाना है। तो ये सब बातें तो मनसा सेवा के लिए तैयारी है। एक तरफ तो मनसा सेवा का डेफिनेशन ये कहेंगे कि जैसे कर्म करो उस घड़ी मन में बाबा की याद रहे, ये भी एक बहुत सुंदर डेफिनेशन है मनसा सेवा का, क्योंकि सिर्फ हाथ पांव चले और बुद्धि योग कहीं और घूमता रहे तो वो कोई कर्म योग नहीं कहेंगे, परंतु जबकि वास्तव में किसके लिए हम ये कर रहे हैं, उसी की ही याद में हम प्यार से कर रहे हैं, तो उस कर्म योग को हम कहेंगे कि वो भी है मनसा सेवा, क्योंकि मन के वाइब्रेशंस आपने उस कार्य में भर डाले, तो वो न सिर्फ कर्म योग है परंतु वो मनसा सेवा भी है। जिस तरह से न सिर्फ भोजन बनाने की बात है, बाबा ने तो ये तो बता दिया है कि जो चीज बनती है, जिस मन की स्थिति में आप होते हो, वो वाइब्रेशंस उसमें पड़ जाते हैं। परंतु जनरली भी, माने कि कोई सिक्योरिटी का काम कर रहा है, यदि एक स्थूल रीति से काम करे तो वो तो एक जॉब हो जाए, परंतु हम बाबा के लिए कर रहे हैं, सोल कॉन्शियसनेस स्थिति में कर रहे हैं, बाबा की याद में कर रहे हैं। जैसे कल बाबा का बहुत सिंपल डेफिनेशन था, लव है याद, लव है धारणा, क्योंकि मुरली एक विशेष मुरली थी, तो उसमें एक एक सेंटेंस बाबा अंडरलाइन कर रहे थे, आत्मस्थिति बाबा की याद, और फिर बाबा ने इंग्लिश शब्द ही यूज किया लव, लव है ही याद, लव है ही धारणा। तो फिर जिस तरह से आप लोग सेवाएं कर रहे हो उसमें यदि मन में वो बाबा की याद, बाबा का प्यार, बाबा के प्रति कर रहे हैं, तो वो कर्म योग भी है, परंतु वो आपकी मनसा सेवा भी चालू है। गुड वाइब्रेशंस आप ऑटोमेटिकली फैला रही हैं उस समय। तो मन द्वारा सेवा, तन द्वारा सेवा, फिर धन द्वारा सेवा। क्वेश्चन उठेगा कि हम तो समर्पण है, हम कोई जॉब करने वाले नहीं है, तो हमारे पास धन कहाँ से आया? तो हम लोगों ने दादी गुलजार से बहुत समय पहले ये पूछा था कि बाबा ये जो मम्मा का एग्जाम्पल देती हैं कि मम्मा तो आई तो हाथ खाली, और कारण कि वैसे भी उसके लौकिक बाप ने शरीर छोड़ा था, तो अपने मामा के पास से पली थी, तो हाथ में तो कुछ नहीं था, वैसे भी कुमारियों के हाथ में कुछ नहीं होता, परंतु मम्मा के पास तो खास कुछ भी नहीं था, तो बिल्कुल हाथ खाली आई। परंतु बाबा जो कहते हैं कि ये इतना धनवान बन गई ज्ञान धन धारण करके, औरों को ज्ञान धन दान करके इतना धनवान बन गई, जो अभी जन्म जन्मांतर उसी से ही लक्ष्मी से धन मांगते रहते हैं आज तक, तो कैसे वो सब कुछ हुआ? तो दादी गुलजार ने बताया कि एक तो उसने दिल से सब कुछ त्याग कर लिया था, एक धक से त्याग था, धीरे धीरे स्लोली स्लोली ऐसे त्याग नहीं किया था, बिल्कुल एक धक से त्याग कर लिया था, तो उसको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए था। और फिर जब वो औरों की सेवा करती थी, और एक साल के अंदर आप कहानियां तो बहुत सुनते हैं, वो तो मम्मा बन गई, परंतु मम्मा ने जो उस समय भी जो कई परिवार वाले समर्पण हुए, एक तो दादी चंद्रमणि का एग्जाम्पल आता, उसने अपने लौकिक परिवार को, अपने बाप को, अपने परिवार को इतनी प्रेरणा दी जो वो सब कुछ समर्पण कर दिया। इसी तरह से मम्मा ने भी, जो और भी दो तीन परिवार थे, मम्मा ने उन्हों को प्रेरणा दी। और ये मैंने देखा है कि जब खुद का त्याग होता है तब औरों को प्रेरणा आती है अपना भाग्य बनाने के लिए। यदि वो देखते हैं कि इन्हों का तो जीवन बहुत आराम का है, तो किसको क्यों प्रेरणा आएंगी कोई बात का, बाबा के घर में कुछ देने का? परंतु जब हमारी जीवन त्याग की वो देखते हैं, तो फिर उस घड़ी औरों को भी ये संकल्प आता है कि हाँ, हम भी इस कार्य में कुछ अपनी सेवा करें। तो मम्मा के त्याग के जीवन को और मम्मा की पालना के आधार से मम्मा ने तब से यज्ञ की स्थापना से आदि से ही अनेकों को प्रेरणा दी जो वो अपना भाग्य बना सके, और उस आधार पर यज्ञ चलता रहा। और फिर बाद में तो जब सेवाएं आरंभ हो गई, तो उस समय तो अगेन मम्मा ऐसी मूर्ति थी जो सब उसको लक्ष्मी के रूप में ही ऐसे लक्षण वाले गुणवान अभी से ही देखते थे, ऐसे नहीं कि वो बाद में ऐसे था, परंतु उसी समय। तो ये जो औरों को हम सेवा करके और अपनी त्याग वृत्ति से प्रेरणा देते हैं, तो उसका हिस्सा भी कुछ अपने को मिल जाता तो वो हमारा भी धन की सेवा में वो जमा हो जाता। और दूसरा, फिर जबकि बाबा के यज्ञ में हम अपने प्रति यूज करते हैं, तो वो हमारा किस हिसाब में जाता आप सोच लो। और यदि बाबा के यज्ञ में हम बचत योजना से चलते हैं तो वो किस हिसाब में बनता? वो फिर हमारे ही भाग्य में धन की सेवा के अकाउंट में आता। आप लोगों ने खन्ना जी की कहानी सुनी होगी और शायद एक दो ने ना भी सुनी हो, परंतु दादी ये बताती है कि किस तरह से जब वो समर्पण हुए थे तो वो यज्ञ सेवा में हाजिर थे। पांडव भवन के साकार बाबा के दिनों की बात है, 60s की बात है, और अभी तो सारा वहां का भी नक्शा बदल गया है, परंतु जहां पर आत्म प्रकाश भाई का ट्रोली डिपार्टमेंट का भंडारा है, वहां से थोड़ा आगे वो डाइनिंग हॉल ऊपर वाला तो था ही नहीं, वो स्टोर रूम्स भी बाद में बने हैं, परंतु वहां पर एक बॉयलर था और वहां बॉयलर में ही गर्म पानी मिलता था। कमरों में गर्म पानी नहीं होता था, परंतु वहां एक ही जगह थी जहां गर्म पानी होता था, और भाई लोग ये सेवा करके, कोई तो बहने, और उस समय प्लास्टिक नहीं था। आप सोचो कि प्लास्टिक बहुत बाद में निकला है, और प्लास्टिक जिस समय निकला है बहुत एक्सपेंसिव था, तो उस समय होती थी पीतल की बाल्टियां। अभी खाली पीतल की बाल्टियां तो मैं उठाऊं, मैं फर्स्ट टाइम मधुबन में आई थी, मैं थी 15 इयर्स ओल्ड, तो उस समय खाली पीतल की बाल्टी उठाऊं वो भी नहीं हो पाता था, तो उसमें गर्म पानी भर करके लेके आओ वो तो बिल्कुल संभव ही नहीं था। तो दादियों के लिए या बहनों के लिए या मेहमानों के लिए भाई लोग ये सेवा करते थे, पूछ लेते थे, आप लोग वो 3:30 बजे पानी चाहिए गर्म पानी या 5:30 बजे चाहिए आप बता दो, तो मतलब जो भी होता था। परंतु वहां पर जो बॉयलर था वो पहले तो लकड़ियां जलती थी और बॉयलर चलता था, तो खन्ना जी ने क्या किया कि उसने देखा कि कोयले तो यूज हो जाते हैं, वो जब भंडारे में जो भोजन बनता था वो कोयलों पर बनता था, और जो कोयले को उठा लो फिर बाकी बचती थी कोयले की डस्ट छोटी छोटी, और उसको उसने क्या बैठ करके किया, कोई ने उसको सिखाया नहीं, कोई ने उसको कहा नहीं, परंतु उसको खुद ये संकल्प आया। तो जो गोबर होता है तो गोबर से उसने वो सारे को मिक्स कर लिया और उसके बॉल्स बना लिए, और फिर जब वो खुद ही बॉयलर को शुरू करता था 2:30 बजे 3 बजे, तो वो बैठ करके फिर बॉयलर को शुरू करने के लिए गर्म पानी के लिए वो जो गोलियां बनाई, बॉल्स बनाए गोबर और कोल डस्ट का, वो उसमें डालता था, तो लकड़ियों का पैसा वो बच गया। तो बाबा ने कहा कि देखो इस बच्चे ने कितना अपना भाग्य बनाया है, जो वैसे यज्ञ का खर्चा होता था तो इसने वो खर्चा बचा लिया, तो वो भी इस बच्चे के धन की सेवा के खाते में जमा हो गया। तो जो यज्ञ में कोई बचत योजना करता उसका भी धन की सेवा का वो जमा हो जाता। और फिर तीसरा, एक तो किसी को प्रेरणा दो अपने जीवन के त्याग भावना से कि वो सेवा करे, और फिर दूसरा कोई इस तरह से योजना बनाओ ताकि फिर वो लोग, वो जो आप कार्य करते हैं उससे यज्ञ का बिल कुछ खर्चा कम हो जाए। और तीसरा फिर है कि जबकि हम अपने लिए जो यूज करते हैं, हमने यज्ञ से कितना लिया अपने लिए, ये कपल्स का चल रहा है तो उन्हों की समापति समारोह चल रही है शायद अभी, तो गीत वगैरह वगैरह चल रही है तो तीसरा, हमने जो कुछ अपने लिए खर्च किया यज्ञ से लिया वो अभी किस खाते में गया, और यदि हमने मिनिमम यज्ञ से अपने ऊपर खर्चा कराया वो हमारा किस खाते में जाता, तो वो भी एक हिसाब रखने की बात है कि अपना एक तो पुण्य कर्म करते चलो, दूसरा फिर पुराना हिसाब किताब चुकतू करो, उसमें ऐड न करो, और तीसरा फिर ये देखो कि कहाँ तक वो अकाउंट बैलेंस हुआ है, कहाँ तक अभी बचा हुआ है, और उसको फिनिश करने का। तो मैं सोचती थी कि एवर रेडी के हिसाब से हमने कहाँ तक पुराना बिल को समाप्त किया और कहाँ तक अभी आत्मा के अंदर हर प्रकार से पुण्य का खाता जमा हुआ, और फिर साथ साथ न सिर्फ सेवा की, परंतु बाबा ने जो दूसरा भी बताया, खुद संतुष्ट रहे और औरों को संतुष्ट किया, और फिर तीसरा बाबा ने बताया, वो तो फर्स्ट बाबा में फर्स्ट सेकंड थर्ड में थर्ड सेकंड फर्स्ट बता रही हूँ, स्वयं का पुरुषार्थ, वो हमने कहाँ तक अपने ऊपर ध्यान रख करके, क्योंकि वो काम मुझे अपने लिए ही करना है, वो काम कोई दूसरा मेरे लिए नहीं कर सकता। सेवा में कोई भी हाथ बढ़ा करके हमको सहयोग दे सकता, परंतु जो अपने आंतरिक परिवर्तन की बात है तो वो हमें खुद करना है। अभी मैं एक दिन सोच रही थी, जब सेंट्रल कोऑर्डिनेटर्स के साथ थी, तो मैंने कहा कि बाबा ये जो बहुत काल की बात कहती हैं, तो चलो जब भी बाबा के पास आए, बाबा ने मार्जिन दी है लास्ट सो फास्ट, अभी तक टू लेट का बोर्ड नहीं है, अभी भी ऐसे फास्ट स्पीड से पुरुषार्थ करो। परंतु मैं बाबा को थैंक्स देती हूँ कि मुझे लंबा समय मिला है खुद को जानने का, क्योंकि अभी के आए हुए बाबा के बच्चे जल्दी में अपने को जान लेवे वो भी संभव है, क्योंकि सर्कमस्टेंसेस देख करके, औरों को आगे देख करके आईना स्पष्ट हो भी सकता उनों के लिए। परंतु मैं अपनी यात्रा को सोचती हूँ कि मुझे बहुत टाइम लगा अपने खुद को जानने में। जिस तरह से पहले मैं अपने को समझती थी, और फिर धीरे धीरे जैसे संस्कार कितने गहरे हैं, कितना मेहनत करके उनमें परिवर्तन करना है, वो धीरे धीरे पता चला है, जल्दी नहीं पता चला है। और मैं ये भी सोचती हूँ कि कई बातें तो एक्सपीरियंस के आधार पर ही मालूम होता, उसमें एज का भी एक्सपीरियंस होता। लौकिक हिसाब से ये जरूरी नहीं है कि एज से कोई विजडम आए, और ही मैं देखती हूँ कि कईयों की तो एज से बचपन आ जाती है उन्हों को, यान तो वो जो अपने संस्कार है उसमें बहुत पक्के हो जाते हैं, यान तो कहते हैं ना कि बच्चे और बूढ़ा एक समान होता। ये प्रैक्टिकल मैंने लौकिक वालों का कईयों को देखा है, बूढ़ा ऐसे जिद्दी होगा जैसे बच्चा, या बूढ़ा ऐसे बातें बूढ़ा ऐसे बातें करेगा कि बस मुझे अभी ये चाहिए अभी ये चाहिए, जैसे बच्चा करता। तो और बुद्धि भी आजकल तो पोल्यूशन के कारण, कलयुग की अंत के कारण, हिसाब किताब जल्दी चुकतू करने के कारण, मैं देखती हूँ कि कईयों को दिमाग पर बहुत असर आ जाता है। ये तो प्रैक्टिकल देख रहे हैं संसार में, परंतु ज्ञान में कुछ अलग बात है। जैसे आयु आगे बढ़ती है, रियलिटी है, एक एक बात का जो एक्सपीरियंस बनता जाता, वो एक्सपीरियंस जो जमा होता, बाबा ने बहुत अच्छे शब्द कहे हैं, अनुभव की अथॉरिटी, जो एक्सपीरियंस होता उस बात से आपको जो निश्चय होगा, जो अथॉरिटी होगी, वो दूसरे को नहीं होगी, चाहे बाबा में निश्चय, क्योंकि कई बातें देख करके पार करके आप यहाँ तक पहुँचे हो, कई बाबा की कमाल देख करके आप यहाँ तक आए हो। किसने उस दिन मेरे से पूछा कि कोई मुश्किल बात आती है तो क्या आपको उस समय कुछ संकल्प नहीं चलता? मैंने कहा इतना हमने बाबा का खेल देखा है, जादू का खेल, जो कोई बात मुश्किल लग रही है, परंतु फिर हम देखते हैं कि उसका रिजल्ट बहुत ही सहज, बहुत ही सुंदर बाबा ने अपने आप ही करा लिया। हम सिर्फ क्या करें, हम विश्वास रखें और योग युक्त रहें। उसमें एक और छोटी सी कहानी बताती हूँ। लास्ट ईयर मई मास में हम लोगों को जो मुख्य अपने चैरिटी कमिश्नर्स हैं और जो मुख्य देश के लोग हैं, उन्होंने हम लोगों को दोनों तरफ से पत्र लिखा कि आप लोग यूनिवर्सिटी नाम नहीं यूज़ कर सकते। तो हमने तुरंत कहा कि ये तो हम 1985 से लेकर, फर्स्ट हमारा था वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट, जो भारत का भी नाम है, फिर हम लोगों ने, वो इतना यूजफुल नाम नहीं था, फिर 85 में हम लोगों ने नाम चेंज किया था, चैरिटी वही, कारोबार वही, परंतु नाम ब्रह्मा कुमारी स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। तो उन्होंने उस समय स्वीकार किया, तो उन्होंने हमको पत्र लिखा कि 93 में देश के कायदे कानून चेंज हुए हैं। तो भी हम लोगों ने कहा कि हम तो इतना समय से 93 के बाद भी बहुत वर्ष हो गए। तुम लोगों को मालूम था कि कोई एंटी पार्टी जो है वो तो विदेश में भी अपना कार्य कर रही है, भारत में भी कर रही है, तो उनों की तरफ, और उसमें कुछ बहुत पावरफुल लोग हैं, उनों के नाम भी हम जानते हैं, तो उन्होंने ये काम किया होगा। तो जास्ती उसकी बातचीत नहीं करते थे, दादी से राय करते थे, और फिर बहुत बाबा ने अच्छे अच्छे लोग संपर्क में लाए, ब्राह्मणों के ही कनेक्शन वाले लोग, परंतु वो जैसे कि सामने हाजिर हो गए और उन्होंने कार्य को उठाया। और हम बिल्कुल क्लास को भी सुनाने की बात नहीं थी, कुछ वर्णन करने की बात नहीं थी, शांति से जो बाबा को अंदर करना था चलता रहा। 16th जनवरी बाबा के मास में, बाबा के दिन से दो दिन पहले, 18th जनवरी इस बारी संडे थी, तो फ्राइडे दिन 16th जनवरी हम लोगों को पत्र आया दोनों स्थानों से कि आप लोग यूनिवर्सिटी नाम चालू रख सकते। तो ये एक न सिर्फ बाबा के लिए एक जीत थी कि विश्व में, भारत में भी यूनिवर्सिटी नाम नहीं यूज हो सकता, और लंदन में, यूके में यूनिवर्सिटी नाम ऑफिशियली, उस समय भी ऑफिशियल ही था, परंतु फिर बीच में ये गड़बड़ की बात, परंतु मींस मुझे वो सारा समय मई से लेकर जनवरी तक कुछ संकल्प नहीं चला। हाँ, जो कुछ करना था वो हम करते रहे शांति से, परंतु एक जैसे कि आंतरिक विश्वास था जो बाबा को करना है वही होगा, और फिर उसका प्रूफ मिला। तो कहने का मतलब कि अनुभव की अथॉरिटी में कई बातें आती है, अनुभव की अथॉरिटी में खुद को जान, यहाँ वो 8 बजे का म्यूजिक आता आएगा, आएंगा तो मुझे इशारा देना यदि मुझे सुनाई न देवे। तो एक तो खुद को जानने की वो अनुभव की अथॉरिटी आ जाती, हम अच्छी तरह से अपने आप को जाने, टाइम लगता, जल्दी में अपने संस्कारों का मालूम नहीं होता, धीरे धीरे आगे चलते चलते पता चलता। और फिर दूसरा, बाबा के जादू के खेल का भी एक बारी अनुभव, दूसरी बारी अनुभव, कई बारी अनुभव होता रहता, तो वो भी एक अनुभव की अथॉरिटी बन जाती। तो जो भी बात सामने आएंगे बाबा ठीक कर ही लेगा, जो बाबा का काम है वो जरूर हो ही जाएगा, कोई काम रुकने वाला नहीं है। जब बाबा अव्यक्त हुए थे तो मैं उस समय आगरा में थी, मुझे अप्रैल में आई थी मैं ज्ञान में, अक्टूबर में सरेंडर हुई, जनवरी में बाबा अव्यक्त हुए। तो एक हिसाब से आजकल का स्टूडेंट हो तो आप कहेंगे बहुत नया है, परंतु मेरा परिवार के कारण, बचपन के कारण, 8 साल के आयु से कनेक्शन तो रहा था, तो कोई न्यू स्टूडेंट के हिसाब की बात नहीं थी, परंतु फिर भी बहुत बातों में मैं नहीं थी। परंतु उस समय जब मैंने ये समाचार सुना तो मुझे अपने आप को याद दिलाना पड़ा कि मैंने अपनी जीवन भगवान को समर्पण की है। बस वो संकल्प लेकर के मैंने अपने मन को स्थिर किया और फिर नेक्स्ट टाइम जब मुझे ये शब्द बहुत दिल को लगे, जबकि फिर तो बाबा ने खुद ही कहा कि 21 जनवरी ये तो रुद्र ज्ञान यज्ञ है न कि ब्रह्मा यज्ञ है। हाँ, ब्रह्मा बाबा तो निमित्त ऑफ कोर्स, परंतु रुद्र ज्ञान यज्ञ है। और फिर नेक्स्ट जब अक्टूबर मास था, 3 साल 4 साल पहले, जब दादी जी बॉम्बे के हॉस्पिटल में थी, तो उस समय दादी जी जब हॉस्पिटल में थे, उन्होंने बाबा है स्टेज पर और फिर स्क्रीन पर, उन्होंने बॉम्बे में ऐसे कनेक्शन जोड़ा था जो दादी स्क्रीन पर आए और दादी बाबा का सुन सके, बाबा दादी को देख करके बाबा का सुन सके। आपको याद होंगी सीन। परंतु दादी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, तो उसके बाद तो और ही डबल फॉरनर्स, वो था फर्स्ट टर्न डबल फॉरनर्स वाला, तो कईयों ने मुझे कहा कि हमको मालूम नहीं था कि दादी की तबीयत इतनी ठीक नहीं है, तो परंतु वो सभी ने देखा और बाबा वो देख रही हैं और देख रही हैं और बाबा बिल्कुल शांत, बाबा के चेहरे में कुछ फर्क नहीं। फिर बाद में बाबा कहते, बाबा का यज्ञ है, अविनाशी यज्ञ है, यज्ञ चलता रहेगा, आपकी दादी जी वापस आपके पास आएंगे जरूर। तो सबको तसली भी दे दी, परंतु साथ साथ बाबा ने यही कहा कि अविनाशी यज्ञ है, यज्ञ चलता रहेगा। तो कहने का मतलब कि ये जो अनुभव हो जाता है कि कोई भी बात आए, बाबा का यज्ञ है, बाबा चलता रहेगा। तो बहुत काल बाबा क्यों कहते, क्योंकि उसमें आती है अनुभव जो हम जमा करते जाते हैं, वो अनुभव हमारे पास वो जमा रहता है।